Entiendo. बिल्कुल, क्योंकि सामने आ जाए होते हैं, तुमको क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे?
बोलेंगे आप जाओ नहीं वापस मांग।
जब तक रहते हैं तब तक रहे, और क्या मांग सकते? छूट दिए तो सदबुद्धि दो, सदविवेक दो, और
मांगी है तो फिर भगत हो गए, मांग नहीं है
वही तो पूछ रहा हूँ। एक चीज है जो मांग सकते
बाबा, समान बन के लव नहीं हो गया
बाबा, मैं लव लिया और कुछ मांग सकते हैं? ऐसा मांगना नहीं है कि वो भक्ति हो जाए, ये तो भगत का टाइटल मिल जाएगा, मिल तो जाएगा पर भक्त का टाइटल भी साथ में मिलेगा। बोल तो रहा है पर
कहना बाबा जो आपकी बुद्धि वो सारा इधर बैठ देगा, हम आपके ज्यादा बन जाए।
और क्या मांग सकते? चिमन भाई,
चिमन भाई बोलिए, अगर बाबा आपसे पूछे
क्या चाहिए,
चिमन
जरूरत ही नहीं, फिर भी बोल रहा है मांगो।
फिर भी क्या
कुछ है ही नहीं मांगे, फिर
बहुत समान बोल लो, कैसे समझ आता है उसमें? आप बताइए, आपसे पूछे तो आप क्या बोल रहे हैं?
भगवान से भगवान को ही मांगे,
भगवान को ही मांगे,
सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को है
हमारा हो गया
जो उसको उसी से मांग लो,
बन जाए वो जाए ना माता से,
उसी को मांग दिया
अर्जुन ने, उनको ही मांगा था।
नारायण ही सेना चाहिए या
नियत्ता आगे लो,
नियत्ता वो भी
दुर्योधन ब्रातुत्व
तो भगवान को भगवान से ही मांग लो, वो मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए, वो हमारा हो गया।
फिर वो अपने जैसे अनुभव कराएगा संसार में, जैसे वो देखता रहता है हमको भी तो देखना पड़ेगा, रहा नहीं जाएगा फिर।
किसके पास? नारायण की सेना तो थी, उसकी अपनी यादवों की सेना थी, वो तो यदुवंशी था, द्वारकाधीश था, उसके पास सेना तो थी, लड़ाई थी आज की मुद्दे युग में सेना की जरूरत ही नहीं है, वहाँ एक ही राज्य है, अखंड राज्य है, कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर रहा है कभी, एक ही सर्वे सर्वा सम्राट है, एक ही साम्राज्य, तो वहाँ पर एक छत्र साम्राज्य है लक्ष्मी नारायण, तो वहाँ पर खंड खंड नहीं हुआ है भारत, एक ही
सेना नहीं लश्कर होगा, जैसे एक राजा दूसरे से मिलने जा रहा है तो चलेगा सीखे मिलके आते हैं,
लश्कर शब्द ही नहीं,
शब्द नहीं होगा दूसरा शब्द होगा
दासदासी,
दासदासी।
आज क्या कहा बाबा? आज चलते
स्वच्छ बुद्धि के लिए मुझे याद करो,
रिफाइंड
करने
के बाद खाल जब तक शरीर में तब तक ही इसका वैल्यू है, शरीर आत्मा एक बार निकल गई तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी इस देह को सजाने में ही लगे, देह के श्रृंगार में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, स्वयं की देह में आकर्षण और दूसरों की देह में आकर्षण, ये देह का आकर्षण ही सब कुछ है, इसी से मुक्त होंगे, ये एकमात्र पुरुषार्थ है देह का आकर्षण, देह को देख कर भी आत्मा स्वयं की काम वासना की तृप्ति करती है।
सूक्ष्म
देह को देख कर बात कर कर ये भी सूक्ष्म तृप्ति कर रही है। और क्या कहा आज भगवान आ जाते हैं क्या सोचने लगते हैं
बाबा की भी
बाबा ज्ञान मार्ग में ज्ञान का अहंकार आना ये सबसे बड़ा विघ्न
है।
मैं ज्ञानी हूँ पतन का कारण है आत्मा का। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है अभिमान भी बढ़ता है सूक्ष्म और इसी का
अभिमान का तो
ज्ञान
का तो अभिमान होता है लेकिन अभिमान का ज्ञान
नहीं होता है। तो माया का भी तो ज्ञान आवश्यक है। माया क्या है इसका भी ज्ञान जरूरी है। जैसे जैसे आत्मा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसको मान सम्मान सब मिलने लगता है। अध्यात्म में भी आगे बढ़ती है तो उसको भी ये सब प्रशंसा मिलने लगती है। तो शास्त्र में लिखा है कि योगी आत्माओं के लिए प्रशंसा कीर्ति ये वो इसे क्या समझता है गोबर क्योंकि वही उसके पतन का कारण बनता है। जैसे जैसे प्रशंसा मिलने लगती है जैसे जैसे नाम होने लगता है तो कानों को अच्छा लगता है नाम प्रशंसा सुनना सुख मिलता है एक अंदर ही अंदर आत्मा गदगद होती है और ये सुख उसको विवश कर देता है फिर वो उन्हीं लोगों के पास ज्यादा रहना चाहते हैं।
इसलिए पहले राजा वो खास लोग प्रशंसा करते
चाटुकार कहते हैं भाट और पर ऐसे राज्य है उस राज्य साम्राज्य का पतन ही हुआ है। जैसे राज्य में चाटुकार और भाट लोग थे उनका तो पतन ही हुआ वो कभी अखंड साम्राज्य नहीं बन पाया। तो जैसे उन्नति होती जाती है अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़े दो शत्रु है एक है कीर्ति प्रशंसा महिमा और दूसरा है ये अहंकार। अब अध्यात्म मार्ग अध्यात्म वो सब जीत लिया है क्रोध गया लोभ गया अहंकार वो सब गया अध्यात्म मार्ग में स्पिरिचुअलिटी क्योंकि उसमें मिल रही है सब कुछ तो वहां समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां फिर माया जितनी हम आगे बढ़ते उतनी माया भी सूक्ष्म रूप धारण करती है। उस्ताद के साथ उस्ताद महावीर के साथ महावीर बलवान के साथ बलवान शक्तिशाली के साथ शक्तिशाली रूप धारण करते समझ में ही नहीं आता है कि यही माया है उसका रूप भी बदल जाता है। तो ये एक बात बोली और क्या बोला आज शिवानंद भाई आबू की महिमा तो आपको सुनाओ। चलो आबू एक तो मुरली चली थी पूरी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थान चिन्मय आनंद सुना चिन्मय मैंने मेरे जीवन में सबसे पहला जो आध्यात्मिक सत्संग सुना वो चिन्मय मिशन का ही सुना सबसे पहला भटकते भटकते से जा रहा था तो देखा वहां पे गीता हो रहा है पाठ तो उसमें जाके बैठा तो वहां साध्वी थे चिन्मय आनंद के शिष्य वो गीता का नव्या अध्याय चालू था वहां पर पहले ही दिन जब बैठा और पहला ही श्लोक सुना वो राज विद्या राजभूम पवित्र मिलन उत्तम ये राज विद्या है इससे बड़ी और कोई विद्या इस संसार में नहीं है और ये वो विद्या है जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली विद्या है। फर्स्ट जीवन में पहली बार जो सत्संग सुना वो चिन्मय मिशन और तब पता चला इनके गुरु फिर स्वामी चिन्मय आनंद तो बाबा ने आज उसको भी याद किया बहुत बार याद करते हैं चिन्मय आनंद जी क्योंकि वो वही टाइम पर थे ना उन्होंने वही टाइम पर थे चिन्मय मिशन वेदांत गीता हाँ बड़ी गाड़ी वो खुद तो उसका सारा इंग्लिश में बहुत सारा है अभी उसके शिष्य है ये तो साउथ का था परंतु उसके वो स्वामी शिवानंद जो है ऋषिकेश वाले पहले उनका शिष्य था फिर उनको छोड़ के वो अपना आत्मा चालू किया बाद में और क्या बोला आज?
भवन निर्माण होते रहते हैं जो बताया ना, इसका स्वामी नाम बनाते रहते हैं सब
और दूध कैसे कीचड़ पट्टी दूर रहेगी? दूध की नदियाँ आएंगी? दूध तो चाहिए
होंगे
नहीं, नहीं रहेंगे ना दूध भी की नदियाँ बहना तो गायन है मुहावरा संपन्नता की कहावत है वो, कोई दूध की नदियाँ थोड़ी होती है।
नहीं लेकिन दूध तो उनके बच्चों के लिए होता है।
किसके बच्चों के? गाय संपन्नता बहुत है, बहुत देती होगी।
हमको थोड़ी
पीना
नहीं, गाय सारा कुछ दूध से ही बनेगा, दूसरा तो कुछ रहेगा। चलो वो हो गया, अभी आगे और क्या बोला? आगे बढ़ो, अभी दूध से निकल के और क्या बोला? और क्या
बोला?
अनुभवी आत्माएं किसी के प्रभाव में नहीं आती, अनुभवी आत्माएं कभी धोखा नहीं खाती, अनुभवी आत्माएं कभी संग के प्रभाव में नहीं आती, धोखा नहीं खाती। और क्या क्या अनुभव आत्मा की निशानी? और बाबा ने क्या क्या कहा है अनुभव आत्माओं के लिए? अथॉरिटी होती है अनुभवी आत्मा, परख लेती है सिचुएशन, त्रिकालदर्शी होती है, टॉप स्थान पर बैठती है और वहां से देखती है और फलक से कहती है कि हम ये थे और ये बन रहे हैं।
हम देवता से बुरा उठे हो गए जाके कब बोलो।
तो जैसे संगम युग टॉप का स्थान है तो वो त्रिकालदर्शी स्थिति में ऊपर है अनुभवी आत्मा। और अनुभवी आत्मा क्या होती है?
कभी धोखा नहीं खाती,
कभी नहीं धोखा खाती एक क्योंकि अनुभव है ना उसके पास, एक बार धोखा खा लिया वापस वही गलती नहीं करेगी,
छाछ को फूंक के पिएगी।
हाँ फूंक फूंक के कदम रखेगी अपना, एक बार ठोकर खा ली अभी नहीं खाएगी ठोकर, एक बार गड्ढे में गिर गई अभी वापस नहीं गिरेगी। देहधारियों से प्यार करके देख लिया बहुत धोखा मिला, वापस प्यार करेगी? उस दिन वरदान भी था ना, दूसरों दूसरा गड्ढे में गिरता है तो दूसरों को देखना बंद करो, वो गिरा मतलब हम भी गिरना, ये क्या समझदारी है? तो दो लहरों को समाप्त करो, बाबा ने कहा ना दूसरों को देखना उसको समाप्त करो। और क्या बोला आज?
प्रयोग के साथ प्रयोग,
प्रयोगी, प्रयोग के दो अर्थ है, एक है एक्सपेरिमेंट करना, एक है उसका यूटिलाइज करना, एक है प्रयोग करना कोई चीज का, एक होता है योग का प्रयोग जीवन में करना, मतलब यूटिलाइज करना, यूज करना उसको। इस तरह से दो अर्थ होंगे, एक तो एक्सपेरिमेंट कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, और दूसरा है उसका यूज करना, यूटिलाइज करना, उपयोग करना। हाँ तो इस तरह से दो, तो बाबा ने कहा प्रयोगी बनो और बनाओ, करने करा में तो होशियार हो। कल भी बोला था ज्ञान सुनने सुनाने में तो होशियार, अभी ज्ञान स्वरूप बनो, एक एक संकल्प समर्थ, संकल्प बीज है व्यर्थ अंधकार। और आज बोला प्रयोग के लिए क्या बोला? बहुत अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार क्या है? श्रेष्ठ संस्कार की, श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है, अगर नींव मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार। तो परिवर्तन, संस्कारों को परिवर्तन करो, यह है योग का प्रयोग। और क्या बोला आज? योगी बन रहे, देव योद्धे नहीं बन रहे,
ज्ञान
भी ज्ञान नाम
रखा है, ज्ञान भी ज्ञान नाम भी है।
कल भी था आज भी था, बाबा ने जो एक लाइन कही, छोटी चीज को बड़ा करना, इसे चिंतन कहा जाता है। छोटे को बड़ा करना। बाबा ने एक लाइन कह दी, अभी उसका विस्तार करना, उसके ऊपर उसको अनेक अनेक पहलू से देखना, व्यक्तिगत रूप से क्या है, सामाजिक रूप से क्या है, पारिवारिक रूप से क्या है, आध्यात्मिक रूप से उसी को क्या अर्थ हो सकता है, अलग अलग रूप से उसको देखकर उसका विस्तार करना, यह चिंतन।
ये तो बार वाले बोलते टाइम ही नहीं है।
क्यों टाइम नहीं है? बहुत टाइम है ब्राह्मणों के पास, जितना टाइम है उतना तो संसार में और किसी के पास नहीं है। अमृत वेले के पास जितना टाइम ब्राह्मणों के पास है उतना है किसी के पास? लोग तो उठते ही 7 बजे 8 बजे
10 बजे तक उठते,
12 बजे उठने वाले भी
हैं।
और वो भी यहाँ के ब्राह्मण भोले पुरुषोत्तम नहीं है के ब्राह्मण
एकांत के लिए भी बोला, जी हाँ एकांत तो लगी पड़ी है संसार में, तो गोरख धंधा खटमले खाते रहते हैं पीते रहते हैं। और भी कुछ बोलो। कौन सा
नहीं
तो देलवाड़ा और सोमनाथ दोनों को जाते हैं।
सोमनाथ को गया वही दिलवाड़ा बताया कि 3750 वर्ष 1250 साइज
बनाते रहेंगे।
बाकी वहां जाके उनको ज्ञान नहीं सुनाना, कुछ ऐसा नहीं
तो तुमको ज्ञान सुनाएंगे, अज्ञानी समझते। और कल को क्या बोला था
जी?
कल साकार उसमें
बुढ़ियों को जाएंगे, बुढ़ियों की बात है और कारीगरों तुम बहुत पढ़ो,
बुढ़ियों को समझेंगे नहीं, जो ये भी नहीं समझेंगे
उनके लिए एक ही खंड है, बोला अपने को आत्मा को याद करो। पद का आधार है पढ़ाई, इसलिए
आज भी बोला सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। ये डिफिकल्ट है, सिंपल पढ़ाई नहीं, डिफिकल्ट पढ़ाई, सबसे ऊंची पढ़ाई है। चलो अव्यक्तवाणी
अव्यक्तवाणी कौन सी वाली?
दोनों आवाज तो क्या करना है
उसको समझने की जरूरत ही नहीं, बाबा ही कर रहा
है। तो क्वेश्चन पूछता हूँ मत है,
पूर्ण विराम वो छोड़ो, क्या बोला वो उस पे आ जाते
हैं तुम्हारे आध्यात्मिक बल है धार्मिक चमत्कार
वो उसमें कितना सत्य है वो क्या
मैंने कहा उसके मन से उसको पहले कंट्रोल किया और उसको
हो सकता है ना वो एक प्रकार का। चलो वो तो अलग
बाबा क्या नहीं कर सकता,
संसार की महान आत्मा इतना कुछ कर सकती है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? इस ड्रामा में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, यही इस ड्रामा की शोभा है।
मैं सार में कहेंगे दादी की तबीयत के कारण हो सकता है कुछ
भी, शरीर जैसा है माध्यम वो है,
समझ वाले है बाबा
आवाज से क्या है, बहुत सारी बातें हैं पर उसके चर्चा करने से कुछ हमको खास मिलने वाला है नहीं।
उस चर्चा से तो लखाने के लिए
बाहर से लोग पूछते हैं ना, उनको सही जवाब देना पड़ेगा।
निश्चय की बात नहीं, चलो कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट, अंदर क्या बोला वो देखते हो।
देखो एक बात है कि वो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है,
थोड़ा पॉइंट रिवाइज करो
ना। बोलिए क्या बोलो।
दीप राज को याद करते
हैं, दीप राज है, लीला राम है, विश्व पिता है,
खुश रहना है, खुशी बांटना,
खुश रहना और खुशी बांटना, ये स्लोगन दिया पापा ने। खुशी अपनी चीज है, गवाना नहीं है, कोई भी बात है तो अपनी चीज को गवाना नहीं। इसमें एक संकल्प जोड़ा जा सकता है कि हमको खुशी देने वाला कौन, जो खुशी हमको भगवान से मिली है वो हम कैसे छोड़ सकते हैं,
कल ही देंगे क्या वो।
तो जो सुख और जो शांति संसार में, तो आज बोला ना काग विष्टा समान शांति है, काग विष्टा समान सुख है। अगर तुमको जो सुख मिला है वो स्वयं परमात्मा द्वारा दिया हुआ सुख है, परमात्मा द्वारा मिली हुई शांति है, परमात्मा द्वारा प्राप्त खुशी है, तो वो खुशी को बातें कैसे छीन के लेके जा सकती है। तुम्हारी खुशी की कीमत कितनी है, 1 करोड़, और खुशी अपना बातें 2 पैसे की बातें, 5 पैसे की बातें, 2 पैसे की बातें लिए, 1 करोड़ की खुशी हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए,
अंदर किसी को नाराज भी कर दे तो भी खुद खुश रहने
वो भी नहीं करना है। खुश कौन रह सकता है, जो तीव्र पुरुषार्थी है वही खुश रह सकते हैं, जो आत्मिक स्वरूप में लंबा समय सारे दिन भर स्थित रहने का अभ्यास कर सकते वही खुश रहते, जिनका अमृत वेले जो परमात्मा मिलन का अनुभव करते हैं वही खुश रह सकते हैं, जिनको ज्ञान में रस है वही खुश रह सकते, जिनका सारा दिन भर योग लगा हुआ है वो खुश रह सकते, जिनका दिनचर्या सेट है, जिसके दिनचर्या में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है वो खुश रह सकते, सभी खुश थोड़ी रह सकते। निर्बंधन है, निर्भर है, निर्बोज कुमार
है,
सारी क्वालिटीज है कि किसमें खुशी रह सकती है। मेन आधार जो सब चीज का है वो है ज्ञान, ज्ञान आज बोला ना विकार में जाते हैं तो ज्ञान बह जाता है, आज के मुरली में वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है, जैसे ही विकार में गए ज्ञान बह जाता है, जैसे ही व्यर्थ संकल्प आए ज्ञान बह जाता है, जैसे ही देह की तरफ आकर्षण हुआ ज्ञान बह जाता है। तो ज्ञान को पकड़ के रखना है, मेन बीज जो है वो ज्ञान है, अपनी बुद्धि में समर्थ संकल्प होने चाहिए, क्योंकि उस दिन भी बोला ना संकल्प बीज है, अगर बीज समर्थ है तो सब कुछ ठीक है। एक एक संकल्प में कहां कहां व्यर्थ है और कहां कहां विकार है, उसको विकारों से मुक्त करना है, संकल्प को व्यर्थ से मुक्त करना है, तो शक्तिशाली बनेगा। और क्या बोला,
ये दीप राज और दीपों का मिलन संगम पर,
ये केवल संगम पर ही होता है, ये सौगात है बाबा ने कहा,
और बाबा ने जो बोला है संगम का, बाबा तुम मेरा बना लो,
ये काम बहुत कठिन है, तो वही ना इतना आसान है जितना बोलने, वो बोलने के लिए तो मेरा बाबा बोलने को क्या लगता है, ये कोई मुख का सौदा नहीं है, ये दिल का सौदा है। कोई बाबा ने ये भी कहा ना, कोई बोलते है कोई नहीं भी बोलते, पर अंदर में सबके है, ना बोलते हुए भी यहाँ ऐसी बात है। तो भगवान को अपना बनाना कैसे हो गई, अपनापन आज बोला ना कि कितना सुंदर वाक्य, मेरा कहा तो याद क्या हो जाएगी, नहीं नहीं अव्यक्तवाणी, अव्यक्तवाणी तो याद अमर, कितना सुंदर वाक्य है अव्यक्तवाणी, अभी बाबा की अव्यक्तवाणी, हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट, तो याद अमर हो जाएगी वाक्य रचना, हिंदी कितनी सुंदर हिंदी है ये, मेरा कहा और याद अमर हो जाएगी, वाक्य रचना भी देखो कितनी सुंदर है, याद अमर, तो उसको अपना बनाना, ये काम है। कैसे बनाना? संबंधों से जोड़ना तो है। आज वो भी याद किया, रूहानी नाता प्रत्यक्ष अनुभव करते हो तुम, पहले ही पैराग्राफ में कहा रूहानी नाता सर्व संबंधों से तुम प्रत्यक्ष अनुभव करते हो यहाँ एक संगम पर, और किसी युग में नहीं करते सर्व संबंधों से। एक भी संबंध कम रहा, एक भी संबंध यदि बाबा से नहीं जोड़ा तो द्वापर युग में उस संबंध से कहीं ना कहीं दुख मिलते रहेगा, उसको अगर बेटा नहीं बनाया तो बेटा बेटी दुख देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। एक ही बात है, उन संबंधों से भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिलते रहेगा, दुख तो नहीं पर कुछ तो कुछ, कुछ तो कुछ होगा। सर्व संबंधों का अनुभव यहाँ करना है,
84 जन्मों का जो भरने का समय है बाबा से,
यहाँ है ना सब, यहाँ है।
लेकिन सबसे अच्छा तो बाबा वाला ही संबंध
है,
बाबा ने उस संबंध के लिए भी कहा ना संसार में, ये जो संबंध है ये सबसे श्रेष्ठ संबंध है।
कौन सा संबंध है?
बाप और बच्चों का।
वही तो मेरे को
संसार में ये संबंध कम है, भक्ति मार्ग में बाप के संबंध से भगवान को कम याद करते हैं, माँ के संबंध से बहुत याद करते हैं, बेटे के संबंध से भी करते हैं, ज्यादा याद करते हैं मालिक या भक्त या भगवान, दास स्वयं को मानना दासानुदास प्रभु, इस संबंध से ज्यादा याद किया जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू के बाहर जो धर्म है उसमें क्रिश्चियनिटी में गॉड फादर कहा हुआ है, उसमें पिता माना है।
सरकार बोल में कहा कि समाज के हर समाज में कोई ना कोई वैष्णव जरूर होते हैं, तो मुस्लिम में होते हैं?
मुस्लिम में वैष्णव,
पहले
वैष्णव शब्द मुस्लिम इसमें नहीं आता है, इस्लाम में
मतलब कोई ऐसा नहीं होता जो मांस मांस नहीं खाते, कोई ऐसे मुस्लिम
नहीं, उनके इसमें कंपल्शन नहीं है, पर उसमें भी ऐसे लोग हैं कि जो ये सब नहीं खाते, जो सूफी संत है उनमें जो एक ग्रुप बना मुसलमानों में, वो जो थे वो जो ईश्वर को साजन के रूप में मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनिटी है सूफी संत, मतलब उसको आशिक माशुक के उनकी जो भी कविताएं हैं वो इसी तरह की। हाँ, ये सारे जो लोग हैं ना, रबिया सबसे श्रेष्ठ जो स्त्री थी, रबिया जो थी वो सूफी संत है। तो ये जो सूफी संत है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक सेंट्स वो, और यहाँ पे हमारे जो फकीर, ये सब का सिमिलर है थोड़ा बहुत। हाँ, वो लोग वेजिटेरियन रहते हैं, पर उनके इसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है, मतलब खाना ही, अगर जिसको अपनी इच्छा से नहीं खाना है तो नहीं भी खा सकता है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो भगवान को अपना, बाबा ने क्या कहा, बाप के दिल में बच्चे, बच्चे बाप है, रिपीट रिपीट रिपीट, बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकता। बाप के बिना हम रह सकते नहीं, बरबर है कि ऐसे ही बोलने के लिए बस
रहना नहीं चाहते हैं।
अगर अमृत वेला किसी का मिस हो गया तो तड़पते ही घात ना दिन भर कि ऐसे ही ठीक है चल जाते हैं, मिलन नहीं हुआ ना।
जो सच्चे हैं कमजोर हो तो भी प्रॉब्लम रहती है,
जो पूर्ण शक्ति है
उनको लगेगा, धीरे धीरे वो विवेक समाप्त हो
जाता है।
वैसा ही मुरली का चिंतन भी वैसा ही है। फिर अगर एक दिन भी अगर मुरली का चिंतन न किया तो ऐसा समझना चाहिए उस दिन की मुरली गई हाथ से। सुबह सुबह भी करो और शाम में भी करो और दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि वो भी फील होना चाहिए फिर, नहीं तो वो भी बाप का डिसरिगार्ड है। बाप से प्यार होता है बाप के ज्ञान से प्यार। मुरली थोड़ा रूटीन वर्ड है, और क्या कहा अव्यक्त वाणी, बहुत सारे पॉइंट सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता के सितारों का सर्टिफिकेट बाप से लेते रहो, सफलता के सितारों का सर्टिफिकेट बाप से लेते रहो।
जैसे अभी सफलता
मिल रही
है,
मिलती रहेगी। और एक पॉइंट,
वाह वाह
वाह वाह। जीवन तुम्हारी कैसी है? साधारण। बाबा ने कहा इसमें ज्यादा तुमको हटियोगी जैसा कुछ करना नहीं है, ना ईट उठानी है ना तगड़ी उठानी है। वो उस दिन इसमें भी बोला, इसमें भी बोला ना तुमको ज्यादा कुछ करना है नहीं, मेरा बाबा बस फुल स्टॉप। मेरी चीज होती है उसको छोटी भी चीज होती तो भूलती नहीं है।
एक जवाब में सब शांत।
और क्या बोला? अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसमें। और भी
बाबा ने ना सदा खुश रहने के लिए मेरा बाबा और बरसा
दोनों को याद कर, याद प्यार जो बाप देते अगर वो भी याद रहे तो निर्विघ्न हो जाएंगे, विघ्न मुक्त हो जाएंगे, तो भी निर्विघ्न हो जाएंगे। जो याद प्यार उस दिन बोला ना संडे की मुरली लास्ट लाइन, रत्न स्नेह की थाली है, स्नेह की थालियां भर भर कर याद कर देते लास्ट लाइन। बताने की जरूरत नहीं। बाबा का शिक्षक का पार्ट अभी हो गया, अभी मिलने आ रहे हैं बस।
अभी लाड़ प्यार ही है थोड़ा,
लाड़ प्यार मिलना बहलाना बस। शिक्षक अभी कितना जो गहरी जो बोलना तो बोल दिया ना 60s 70s में, गहरा गहरा जो भी बोलना था। कितनी गहरी मुरली है संडे की वैराग की,
ब्रह्मा का अपना तन मन धन श्वास ने सब दे दिया बाबा ने।
डीप
बच्चों को शिक्षा हजम करने के लिए ताकत नहीं
है इसके लिए, खाली मिलने आता है और बहलाता है।
देख बाकी पहले वालों से हजम नहीं हो रही है,
हजम किया माँ का दूध तो मिला नहीं हमको
तो
ऊपर वाला।
तो मुरली में मेन चीज तो सर्व संबंधों से अनुभूति, एक तो रूहानी नाता बाबा ने कहा, दूसरा एक खुशी के बारे में था, एक प्यार के बारे में था और हाँ सफलता के बारे में था, निर्विघ्न के बारे में
था। तो इसको मेरा कैसे बनाएं बात तो ये कि कैसे वो सहन
कैसे उसको जो कैसे वो कह रहा है वैसा एक्यूरेट करेंगे ना तो ही वो उसको मेरा बना सकेंगे। वो भी कहे कि ये मेरे है हाँ, जो बाबा जो सदा खुश रहते। बाबा ने ये भी कहा ना वो सदैव हर कदम में आगे बढ़ते रहते हैं एक, और दूसरा बाप के प्यार उनको अवश्य मिलते रहता है और महसूस होते रहता है, और उनको भी महसूस होता है कि मुझे बाबा प्यार करते हैं। जो सदा खुश रहते उन बच्चों के लिए दीपक के दीपमाला को कोई भी बात तंग नहीं कर सकती। ये भी कहा है कोई भी बात दीपक के दीपमालाओं को तंग नहीं कर सकती।
बातें तो आएगी बाबा,
बातें तो आएगी जाती, बातों में प्रभाव है आना और जाना, उनको पकड़ना नहीं है, याद नहीं रखना है उनको,
जाने दो
जाने दो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसको समाना नहीं है अंदर, चित्त में अंदर धारण नहीं करना है। चलो संडे की मुरली
सकास देने के लिए बेहद वैराग्य जरूरी है, बिना वैराग्य सकास दे नहीं सकते।
कौन सी मुरली है ये? 18 जनवरी की
98।
तो विशेष दिन है बाबा ने कहा, स्नेह के पुष्प बाबा को, स्नेह की मोतियों की माला बाबा को अर्पित कर रहे हैं बच्चे, उल्हाने की माला और वो एक माला। तो उल्हाने तो अब तक कौन से देते थे बाबा ने कहा,
पहले
हमको लेके गए साकार में हम नहीं थे सब उल्हाने देते थे, और अभी कौन सा दे रहे हैं, समान बाप समान सम्मान बनकर बाप के साथ जाए।
ये तो अच्छा बंदा,
हाँ ये तो अच्छा है। और इसकी फिर बाबा ने वरदान भी दिया, समान भव संपन्न भव संपूर्ण भव। और इसकी विधि कौन सी बताई, स्नेह के सागर में समान जाओ, सबसे सहज विधि स्नेह के सागर में समा जाओ। इसमें आगे बोला ना, इसमें कुछ कुछ बच्चे समाते हैं फिर निकलते हैं
बाहर, निकलते
फिर डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर की बातें आ जाती है। फिर यहाँ बताया परमात्मा स्नेह से क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 बातें हैं, क्या होगा
पत्थर भी पानी की जैसे
पत्थर जैसी परिस्थितियां भी पानी जैसी हल्की हो जाएगी। एक मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। दो स्नेह छत्र छाया है माया छत्र छाया है कुछ और शब्द है
छत्र छाया में सदा सेफ है
माया की छत्र छाया में सदा सेफ है आ नहीं सकती। और मेन चीज परमात्मा प्रेम क्या करेगा सब कुछ भुला देगा देह और देह की दुनिया। तो परमात्मा स्नेह सब कुछ भुला देगा परमात्मा स्नेह आशीर्वाद का अनुभव कराएगा परमात्मा स्नेह छत्र छाया है परमात्मा स्नेह पहाड़ को भी हल्का बना देगा। ये सब परमात्मा स्नेह कर देगा पर वो परमात्मा स्नेह वैसा चाहिए। इसके लिए पूछा ना आगे भी बाबा ने अगर किसी को पूछो कि कौन बाबा से ज्यादा प्यार करते तो सब कहेंगे हम इसमें सब नंबर वन परमात्मा स्नेह। पर उसकी क्या परिभाषा है परमात्मा स्नेह की ये अगर सब हो रहा है तो वैसा स्नेह भी उतना चाहिए जिगरी एक उसके अतिरिक्त और कोई नहीं केवल वो। बाबा ने कोई बहन का किसी क्लास में कहा एक अपने दिल के अंदर सोफा नहीं रखो जिसमें तीन चार लोग बैठे केवल एक चेयर रखो जिसमें एक बाबा ही बैठे एक ही चेयर रखो ताकि बाबा ही बैठे ऐसा आप लोग चेयर रख देते हो सोफा रख देते कोई इधर से बैठता है कोई उधर से बैठता है तो बाबा ऐसी जगह रहता नहीं है वो भाग जाता है भक्ति में भी गाते हैं वो नटखट है
बाबा नहीं सुनते सीतामा का बाबा
नहीं हाँ एक वो कृष्ण जो दिखाते हैं ना वो सब जगह थोड़ी माखन चोरने जाता है जहाँ मतलब वो माखन अर्थात शुद्ध हृदय जिन गोपियों का है उसी घर में जाते हैं जहाँ शुद्ध हृदय है और वो वही जाता है ऐसे दिखाया मतलब दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई वो विदुर के घर जाता है उसके घर नहीं जाता है उसको वो पसंद नहीं है ज्यादा। और वो ऐसा है कि वो थोड़ा भी अपवित्रता है वो भाग जाता है वहां से नटखट तेरा लाल यशोदा नटखट तेरा लाल और रहता नहीं है भागता है अपवित्रता यहाँ है वो उसको पसंद नहीं है। तो परमात्मा स्नेह इतनी सारी बातें बाबा ने गिनाई यहाँ आगे भी बोला ना ब्राह्मण बने तो उसके आदि में कौन किसने खींचा ज्ञान योग तो बाद में आया स्नेह ने आकर्षित किया स्नेह ने परिवर्तन किया स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। तीन बातें बोली वहां पर ब्राह्मण भी किसने बनाया स्नेह ने बनाया ये प्यार ने खींचा है तुमको। तर्क वितर्क तो सब बाद में आया ये सृष्टि चक्र और ये सब बाद में पहले खोज थी किसकी पाने की ना परमात्मा को पाने की खोज थी प्यास थी एक तो वो प्यास शांत हुई वो ज्ञान तो बाद में आया। और क्या बोला
ब्रह्मा बाबा की लाइफ में
हाँ ब्रह्मा बाबा की लाइफ के बारे में कहा कि नहीं ब्रह्मा बाबा के बारे में लोग ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं बाबा ने कहा एक एक बच्चे को हिम्मत करते हैं बाप समान बनने की एक एक को प्रकाश देते हैं। पहले तो सेंटर में भी जाने का इतना नहीं जाते थे अभी तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में जाकर सबको प्रकाश देते हैं। पवित्र प्रवृत्ति में जाता है वो और पवित्र प्रवृत्ति में नहीं जाता शुद्धता जहाँ है पवित्रता जहाँ है वहां जाकर भी प्रकाश देते हैं। कौन से टाइम में 2 बजे 2:30 बजे साथ निभाते हैं हर समय साथ निभाते जैसे उदाहरण दिया दो उदाहरण दिए एक तो ब्रह्मा के अपने जीवन का जैसे पहले रत्नों को चुनता था ना तो यहाँ पर भी एक एक रत्नों की विशेषता को कार्य में लगाता है वाह मेरे अमूल्य रत्न वाह। दूसरा उदाहरण कृष्ण का उदाहरण जैसे कृष्ण को किसके साथ दिखाया हुआ है एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण को दिखाया हुआ है वो जो रास वाला गीत महारास वाला गीत है महाभारत में दिखाते हैं ना एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण और वो एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। वैसे राम के लिए भी दिखाते जब राम अयोध्या से वापस आता है तो सब अयोध्या वासियों को लगता है कि हमसे सबसे पहले राम मिले प्रभु धरी विविध शरीर उसमें दिखाया है कि भगवान असंख्य रूप धारण करते ताकि हर एक से मिल सके। बाबा ने भी कहा ना, बाप दूर के बच्चों को भी नजदीक देखते हैं, अभिवाणी में वाक्य, बाप भी दूर के बच्चों को नजदीक देखते हैं। कहां पर भी हो,
पीछे वाला पीछे में समझो।
हाँ, तो वहां वो तो वैसा हो सकता है, तो यहाँ तो सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
इन बात देखते हैं बच्चों को, बच्चे भी पास में अनुभव करें।
हाँ, और एक चीज बहुत सुंदर बाबा ने ये मुरली में कहा है, हर एक बच्चे के सूरत में क्या देखते हैं बाप, अव्यक्तवाणी परसों की, परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्यार। सुना अच्छा लाइन, हर एक बच्चे के सूरत में बाप क्या देखते हैं, परमात्मा स्नेह। संसार के लोगों के सूरत में क्या, निराशा, उदासी, दुख है, चिंता है। यहाँ क्या है, परमात्मा स्नेह है हर एक के चेहरे में, हर एक के सूरत में बाप परमात्मा स्नेह देखते हैं। फिर ये हो गया ब्रह्मा, फिर उसके बाद में मुक्ति वर्ष के लिए हमने मेहनत से मुक्त बोल दिया ना, हमने परमात्मा प्रेम मेहनत से मुक्त कर दिया, मुश्किल अनुभव नहीं होता है कुछ भी, प्यार है तो सब कुछ करते हैं। हाँ, आगे आगे आगे, थर्ड पैराग्राफ। फिर उसके बाद मुक्ति वर्ष के बारे में कहा, मुक्ति वर्ष मनाओ, लगाओ मुक्त बनो, मुक्त लगाओ मुक्त, मेहनत से मुक्त बनने का बाप ये दे रहे हैं आशीर्वाद, वरदान दे रहे हैं बच्चों को, वरदान दे रहे हैं। फिर वो उसके बाद में ये बच्चों के शुद्ध संकल्प की फाइल की फाइल जमा है बाबा के पास, हर नए फंक्शन में एक प्रतिज्ञा पत्र उसमें जमा होते जाते हैं,
इसलिए
प्रतिज्ञा करना बंद कर दें, एक एक प्रतिज्ञा पत्र, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। पर बाबा ने कहा ये करना और उसमें इम्बैलेंस है, उसमें बैलेंस नहीं, वो ज्यादा है, चाहना ज्यादा है, करना कम है। और फिर बाबा ने आगे भी वो भी बोला ना, परमात्मा प्यार के लिए संसार में क्या किया जाता है, जान, जान कुर्बान करते, तो यहाँ क्या करना है, जान नहीं, जहान, पुराना जहान यहाँ कुर्बान करना, इसकी डेट फिक्स कर, परंतु जहान मतलब दुनिया, दुनिया दुनिया
नहीं,
विलायत, संसार सारा सृष्टि
भूलना है,
वही वाली बात। बाबा बाबा ने कहा बच्चे कब कब में हिरे हुए हैं, बाबा कहते हैं अब, बच्चे कहते हैं कब, तो बच्चों के कब को देखकर बाप भी अब कहते हैं, बाप बच्चों के कब को देख के बाप भी कब कहते हैं, फिर
कब कहेंगे,
फिर वो ब्रह्मा के लिए ये सबसे अच्छा करेगा। क्या कहा ब्रह्मा के लिए, देहत के वैराग्य वृत्ति, समय, पहले तो समय को शिक्षक के लिए कहा कि समय तुम्हारा कौन है, रचना है, तो रचना तुमको सिखाए नहीं, समय एक दिन तो कराएगा ही, सब कुछ छोड़ना है, कोई एक इच्छा है वासना है उसको समय एक ना एक दिन तो छुड़ाएगा, पर उसके पहले हम उसको छोड़ दे, तो हे रचता, बाबा ने कहा ना हे रचता, तो शिक्षक तो तुम्हारी रचना है, वो तुमको ना सिखाए। फिर ब्रह्मा के लिए वैराग्य वृत्ति, सात आठ बातें है उसमें, तन मन धन समय साधन वस्तु कपड़े मकान श्वास समय, ये सारी बातें। तो तन में
रथ भी बाबा का है, मेरा
तन रथ बाबा का है, मेरा नहीं है, इसको मैं खिला रहा हूँ। तन मन धन, मैंने धन लगाया, ये मेरा धन है, संकल्प भी नहीं, ऐसा संकल्प भी नहीं। माताओं को बिल कर दिया सब कुछ, कन्याओं को माताओं को सब कुछ बिल कर दिया, एक पैसा भी अपने लिए नहीं लगाया,
जो चूरे में कपड़ा रहा वही लगाया,
जो वस्त्र था वस्त्र का जो प्रकार था उसको चेंज नहीं किया, सेम शुरू से अंत तक वैराग्य वृत्ति रही,
और वही दादी की रही, माना जब तक बटी रही, इतना कुछ होते हुए भी दादी ने कोई हमारी तो नहीं
रखी ना, वही ना फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ब्रह्मा कुमार इसमें भी नीचे 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 थोड़ा ये हो जाता है, तो जो हाँ मतलब जैसे कोई भी धर्म स्थापक जो होता है तो पहले उसके जो फॉलोअर्स होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो विस्तार करते हैं सर, फिर धीरे 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 थोड़ा डाइल्यूट होते जाते हैं। अभी वाले जितने बाबा से मिलने आते हैं, कईयों का तो कोर्स भी नहीं होता है, ऐसे ही आ जाते हैं, पूछो उनको, कई आ जाते हैं ऐसे ही आ जाते
हैं।
नहीं उसको ये शब्द यहाँ नहीं यूज किया जा सकता है, फिर भी ब्राह्मण होते हैं, ज्ञान तो सेम है, क्वालिटी की बात है। यहाँ जो नहीं आते मैं
जो
हमारे उनको अनुभव कहाँ होता है कुछ,
वो प्राप्ति भी नहीं कर पाए,
कुछ नहीं प्राप्ति हो जाती, बस ऐसा थोड़ा बहुत कुछ दिख जाता है उनको, प्राप्ति कहाँ होती है। ऐसे कोई एकदम पक्का अभी निकले ऐसा कोई विरला ही है, जो आ जाए और एकदम उड़ जाए ऐसे बहुत ही कम है। जो अभी अभी जो कुछ सालों में आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कितने कम है, बहुत कम। तो
तन मन धन आए थे पेडियाट्रिक डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर रश्मि चालकिन चले थे, उस साल में कोर्स कराए, बोला वहाँ जाओ राम शिव भाई को बोलते उनके मामू से मिला, वहाँ के थे गया राम शिव भाई ने डायरेक्ट वापिस कर।
थोड़ा तो स्टिक चाहिए ना, आज भी बोला ना ब्राह्मणी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लेके आएंगे तो पत्थरबंदी कर देंगे
दोनों, एक मुरली में तो कहा था दोनों शापित हो जाएंगे, आज नहीं बोला, बोला है ब्राह्मणी दोनों पत्थर पत्थरबंदी शापित हो जाएंगे। तो तन मन धन, उसके बाद में समय, समय भी सारा दे दिया, उसके बाद में वस्त्र, उसके बाद में मकान
बच्चों के लिए सुविधा,
और वो भी बच्चों के लिए उपराम रहे स्वयं, फिर उसके बाद में अनन्य बच्चे सामने थे, हाथ सा हाथ में है परंतु फिर भी उपराम स्थिति,
कोई
लगाव नहीं। उसके बाद में परिस्थितियां समस्याएं आई परंतु उसमें भी पास हो गए, मैंने इतनी सारी बातें की नहीं है बाबा। इन सब का आधार है वैराग्य वृत्ति, संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का आधार ही वैराग्य है, बाकी सब है नहीं है वो अलग बात है, पर वैराग्य मेन चीज है। वैराग्य जैसे कम होता है तो वस्तुओं से लगाव उत्पन्न चालू होता है, बाबा ने आगे लगाव के लिए भी कहा ना, ये साकार मुरली अव्यक्तवाणी परसों की भी कहा ना, ये समय कौन सा है उड़ने का, और इस मुरली में कहा कि लगाव क्या करता है, उड़ने नहीं देता, ना इधर का रखता है ना उधर का रखता है। तो सूक्ष्म लगाव, महीन लगाव, स्वयं के लगाव को संपूर्णता के दर्पण से चेक करो, ये हमारा संपूर्ण स्वरूप जिसमें लगाव है नहीं और यहाँ ये मैं इसमें लगाव, इससे चेक करो, अपना लगाव स्वयं से चेक होता नहीं, ये भी कहा बाबा ने उसमें, तो उसकी गहराई में जाके कौन कौन से लगाव है उन लगाव से संपूर्ण अनासक्त स्थिति अध्यात्म की बहुत अच्छी अवस्था है, किसी से भी लगाव नहीं, अलगाव की अवस्था, किसी से कहीं कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है किसी से, सबके बीच में है परंतु जैसे हमारा काम हुआ खलास,
सब अपने अपना कोई,
हाँ एकदम अनासक्त,
बस
उस किसी में भी अगर मोहर रहा तो वो याद आते रहता है, व्यक्ति याद आता है, उससे चाहनाएं होती है, उससे अपेक्षाएं होती है, कामनाएं होती है, उससे लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होते रहता है प्यार का, पर कुछ ना कुछ होते रहता है। इसके लिए बाबा ने कहा ना अपना बना लो बाबा को, ये वही तो बात है कि हृदय में और कोई दूसरा नहीं, जैसे पतिव्रता नारी के लिए वो अगर किसी और के बारे में सोचे तो उसे महा महा पाप कहा जाता है, वैसे यहाँ पर भी है, एक ही अंदर एक ही रहे, उसके लिए बहुत जबरदस्त समस्या साधना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वो किसी ना किसी में आसक्त होने का स्वभाव है, हर रात आकर्षण विकर्षण का खेल है, कोई उसको ज्यादा पसंद है, कोई दूर भागता है, कोई और अच्छा लगने लगता है, कोई अच्छा नहीं लगने लगता है, जो पहले अच्छा लगता है वो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, जो पहले अच्छा नहीं लगता अभी वो अच्छा लग
रहा है,
वो भी है, वो भी एक प्रकार से निगेटिव टाइप का लगा
रहा है,
बार बार तो अनासक्त अवस्था, लगाव मुक्त अवस्था और वैराग, ये जो बातें हैं ना इसकी चर्चा ब्राह्मण परिवार में बहुत कम है, सारी चर्चा मेरा बाबा बाबा और वो सब, पर ये वैराग्य जो है ना उसकी चर्चा बहुत कम है, आंतरिक वैराग्य निरंतर बना रहे, निरंतर चित्त प्रज्ञ तो बहुत हाईएस्ट है, चित्त प्रज्ञ साक्षी उपराम ये सारी अध्यात्म की ऊंची ऊंची अवस्था है। पर जो हमको रखना है वो है कि संकल्पों में, संकल्पों को चेक करते रहना, किसी के प्रति लगाव तो नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब सबसे पहले शुरुआत है संकल्पों से, फिर पहले संकल्पों में आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर उससे बात करने की इच्छा आएगी, उससे घूमने की इच्छा होगी, और कुछ करने की इच्छा होगी, तो ली दो मतलब ज्ञान की रीति से ही सब कुछ करेंगी ब्राह्मण आत्मा है तो, पर वो सारा भी लगाव ही है, तो संकल्प से ही उसको कट कर देना है, लगाव वही उसको कट कर देना है, संकल्प में आया कि इसको ये करूं वही उसको स्टॉप कर दो, करना ही नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि वो करना भी देह आकर्षण ही है, चाहे कितने भी अच्छी भाषाओं में उसको कवर किया जाए परंतु वो आकर्षण ही है। किसी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति से बहुत प्यार है, दो व्यक्ति है, दोनों यदि जवान है और सुंदर है और वो कितना भी कहे कि हमारा प्रेम है, निर्विकारी प्रेम, इमेजिन करो कि वो जो व्यक्ति है जो दूसरी है वो अगर बूढ़ी हो जाए तो वही प्रेम रहेगा, उसका चेहरा कुरूप हो जाए एकदम तो वही प्रेम रहेगा, वही इमेजिन करो कि वो व्यक्ति ऐसी हो गई अभी तो वो प्रेम रहेगा, कम हो जाएगा थोड़ा, मतलब वो प्रेम था ही नहीं, वो देह ही आकर्षण ही है, उसका डायग्नोसिस ही गलत है। जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो वो अंतर मन की वासनाएं हैं बस। कहाँ से प्यार बताओ, कौन सा प्यार, कहाँ प्यार, कुछ रहा गया, कोई ऐसी एक नाइलाज बीमारी हो गई तो रहेगा प्यार, कम हो जाता है। हमारे पास एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था, मतलब वो लोग घूमने आए थे, कपल अभी शादी हुई थी 5 दिन पहले, माउंट घूमने आए, उसकी जो पत्नी थी वो ऐसे, वो कहाँ सनसेट, उधर वाला सनसेट, ऐसे ऐसे पीछे गई और गिर गई, हेड इंजुरी, लेके आए ब्रॉड डेड, तब तक तो डेथ हो चुकी थी। तो वो जो भाई था इतना रो रहा था, इतना 2-3-4 घंटे तक जोर जोर से बैठ के रो रहा था, इतना, हाँ, वो गेट के बाहर, हॉस्पिटल के गेट के उधर फर्स्ट काउंटर के सामने, अच्छा। इतना रो रहा, इतना रो रहा, इतना रो रहा। संसार की रीति से वो प्यार है परंतु ये प्यार नहीं है, ये वासना है। कोई 4 दिन में कोई इसको कितना जान सकता है। प्रेम तो बहुत बहुत ऊंची चीज है, प्रेम का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रेम का सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, प्रेम हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, देह के साथ उसका संबंध नहीं है, वो आत्मा आत्मा के साथ संबंध है। अगर ऐसा प्रेम है वही सच्चा प्रेम, निस्वार्थ अनकंडीशनल, वो प्रेम है। और वो प्रेम केवल एक परमात्मा के साथ ही हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, वो किसी देहधारी के साथ होना बहुत मुश्किल हो सकता है, रेयर। बाबा याद करते हैं लैला मजनू, ये जितने सारे लोग हैं ना, ये लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ये सब का सच्चा प्यार है, क्योंकि इनमें से कभी किसी की एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई है, ये सारे जो है किसी की भी नहीं हुई है, तो प्रेम ही ऐसा है कि उन दोनों की भी मृत्यु हुई है, गुजरात में 2-3 है, पंजाब में 2-3 है, उड़ीसा में 1-2 लोग है ऐसे, उधर तो कितने सारे ऐसे, जितने हैं उनकी किसी की भी शादी नहीं हुई है, उनका देह देहिक प्रेम नहीं है।
अभी बीके कहा रहते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में रहते हैं और ज्ञान काल में कुमार कुमारी बनते रहते हैं, यहाँ घूमने के इनसे आके बीके हो गए,
मतलब ऐसे जो लोग हैं, प्रेम जिसको कहें ना बहुत रेयर है, वेरी रेयर एंटिटी होगा, ऐसा नहीं, पर मैक्सिमम 95-97% जो है वो वासना है,
ज्ञान के पहले आत्मा,
हाँ, मतलब वो देह के साथ आत्मा इतने जन्म रही है कि वो उसके साथ रह के उस आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाती है, चाहे कुछ भी करे, चाहे बाबा की बन जाए, बाबा से मिले, पर भी वो आकर्षण रहता ही है आत्मा में, टेस्ट जिसने वो ले लिया ना एक बार, वो विकार का, वो भूलता नहीं है आत्मा, इसके लिए कुमार जो है वो सबसे पावरफुल है। ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, उसकी जो टेस्ट है वही उसका पतन है, जस्ट टेस्ट, क्योंकि वो जो वासना है वो ऐसी है कि वो भूलता नहीं है आत्मा। एक है खाने का सुख, वो भी इंद्रिय है, वो भी इंद्रिय सुख है, पर वो जो इंद्रिय सुख है वो सर्वोपरि सुख है संसार का, उसके ऊपर कोई सुख नहीं है। इंद्रिय सुखों में उसमें भी अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है आत्मा को, इसके लिए वो खींचते रहता है, वो भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है। उसके लिए भूलेगा जैसे माता और ये सब, वो बहुत अच्छी साधना चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, मतलब ऐसा वातावरण उसको मिल जाए आत्मा को, तो वो सारा विकार का सब भूल जाएगा। बाकी वो संसार में रह के वो तो नहीं भूल सकते, रहता ही है यार। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म से सूक्ष्म लगाव को भी समाप्त करो। लगाव आसक्ति, किसी से आसक्ति नहीं, वस्तु भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं। आज सब कुछ है और कल सब कुछ नहीं भी होगा तो भी हमारी स्थिति वैसी रहे। आज सब कुछ है और कल सब कुछ छिन जाए, ये भी कुछ निर्मोही अवस्था, लगाव से मुक्त अवस्था। तो इस चीज के लिए तो बहुत बार 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 एक केवल मुरली पढ़ना और चिंतन करना, क्योंकि मुरली में सब कुछ नहीं आता है एक दिन के, वो उसके अलावा भी बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, उसके अलावा भी कुछ पावरफुल थॉट्स हमारे पास है, पावरफुल चिंतन हमारे पास है। क्योंकि पुरली में कई बातें ऐसी होती है वो जस्ट वो ज्ञान की बातें होती है, उसका व्यवहार के साथ ज्यादा संबंध नहीं है। पुरली की बातें आई, हमने डिस्कस किया, हो गया, इतना नहीं है। वैराग्य की बातें बहुत कम आती है, कुछ कुछ इसमें आती है, और वो बातें सुन सुन के भी इधर से सुन के इधर से गई, दुनिया विनाश होने वाली है देखते हुए नहीं देखो, इधर सुना इधर से गया, काम महाशत्रु इधर सुना इधर से गया, बाप समान बनना है, फॉलो फादर, लक्ष्मी नारायण, ये बातें तो क्लास में बिल्कुल बोलनी नहीं है, थोड़ी पावरफुल बातें चाहिए। ये इतना रूटीन हो गया है कि इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता, सुन सुन के वही वही वही। एक तो शब्दों को परिवर्तन करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा और अध्यात्म का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन, ये जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं, असर नहीं पड़ता है ना, वही वही बातें सुन सुन के तो रूटीन जैसा हो गया है। और क्या बोला संडे की मुरली में, यहाँ पूरा हुआ शायद,
पूरी सारे मुरली पूरी,
पांच सात पैराग्राफ है उसमें, लास्ट जो है वो सबसे पावरफुल है वैराग्य के ऊपर, ब्रह्मा के जीवन, उसमें भी फॉलो फादर करो, अनुसरण करो, वो सब बातें।
भक्ति में सबसे ज्यादा वैराग्य कौन रहा?
भक्ति में वैराग्य भरतरी, ये सारे भक्त ही वैराग्य रहे, पर ये जो भरतरी और गोपीचंद है इनके बहुत श्रेष्ठ वैराग्य था, बहुत ज्यादा वैराग्य, सब कुछ ही छोड़ दिया था। मेरा भी वैराग्य है,
मोहित
राय, वैराग्य की बातें पढ़ते रहना चाहिए, ऐसी बातें पढ़ना चाहिए कि जिसमें संसार के दोष देखने चाहिए बार बार, संसार में क्या क्या दोष है उन दोषों का चिंतन, तो संसार से प्यार कम हो जाए, व्यवहार संसारिक जो जीवन है, वैवाहिक जो जीवन है उसमें क्या क्या दोष है उसका चिंतन, जो लोग हैं संसार में कितने दुखी हैं उनके दुखों का चिंतन, बार 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 चिंतन ये करते रहना, क्योंकि हम वो चिंतन करते नहीं, दिखता है पर हम चिंतन सोच नहीं रहे उसके बारे में। एक है एक जगह बैठकर इस संसार के दुखों का चिंतन करना, कि संसार तो जैसे फर्नेस है, एक भट्टी है जिसमें सब मर रहे हैं फिर भी भाग रहे हैं उसमें, लोगों को वही पसंद है, जैसे वो कुत्ते का उदाहरण है, हड्डी उसको मिल गई बस उसको पकड़ा हुआ है और खा रहा है, उसको खून निकल रहा है, वो उसी का खून है, उसको लग रहा है वो हड्डी से आ रहा है खून, उसको लग रहा है वो खून हड्डी से आ रहा है और उसको बहुत अच्छे से खा रहा है, वो पी रहा है उस खून को, वो हड्डी के लिए दूसरे कुत्तों के साथ झगड़ा भी कर रहा है, छोड़ता नहीं हड्डी को, पूरा लहू लहू निकल रहा है इधर से। संसार के व्यक्तियों की हालत भी ऐसी है, उसको लगता है ये संसार के जो सुख है उसको सुख दे रहे, दुख जो है दुख पर लगता है सुख दे रहे, और उनके पीछे भागते रहता है और दुखी होते रहता है, ऐसे चक्र में फंसा हुआ है। ये तृष्णा है, वासना है, कभी समाप्त तो नहीं होती, एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती जाती है, उत्पन्न होती जाती है, उसको ऐसे पूरा घसीट देती है कि समझ में नहीं आता उसको कहाँ है, वो फंसा देती है उसको। ये चक्र है एकदम कुचक्र, खतरनाक वो चक्र भी हुए वो एकदम, उसमें जाने के बाद में निकलने का मार्ग ही नहीं, पता ही नहीं चलता, बड़ा जबरदस्त वैराग चाहिए, एक ऐसी वैराग की तलवार चाहिए जिससे सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा खून भी निकलेगा चलेगा, पर वैराग की तलवार चाहिए हाथ में, तोड़ना है एक एक बंधन को, दूसरों को दो तू काट भाई मारने दो, खून तो निकलेगा, थोड़ा दुख होगा, पीड़ा होगी, मोह से छूटना है तो बहुत पीड़ा होगी, वेदना पीड़ा बहुत ज्यादा, परंतु वो सुख जो पहले अमृत के समान है वो अंत में दुख हो जाता है, और वो सुख जो पहले दुख है फिर वो अंत में अमृत हो जाता
है। तो कहां जाएगा
बोला, हम क्रोध छोड़ते जाता कहां है।
एक एक विकार की अक्षयोनी सेना है, एक एक विकार
की
जाए नहीं। और उस पे जीत पाना मतलब बहुत,
जो है जगदीश भाई का किताब उसमें
एक के ऊपर
अक्षयोनी
इधर उधर बहुत जाते हैं। तो एक एक को जीतना है कि बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है, सबको जीतना है। तो मोह, मोह एक जबरदस्त है, ज्ञानी आत्माओं में ज्ञानी आत्माओं के साथ मोह हो जाता है ना, स्त्री पुरुष बहन और भाइयों के में बहुत मोह हो जाता है, सेवा करते करते मोह होता है एक दूसरे में, वो करते हुए भी अपने को अलग रखना है।
वो बाबा के बारे में बताएं, बाबा को बच्चों में बहुत प्यार था,
ये फोटो ये सब जो है ना ये सब माया की सामग्री है सर,
लेकिन
सच्चा प्यार तो वही है ना, सच्चा प्यार दिखावे वाला थोड़ी ना होता है, दिखाना कि मैं हम बहुत आगे आगे करना, वो प्यार थोड़ी है।
जब बीमार थे तो बाबा रात रात जागते
जाग के सकाश देते थे। सबसे बड़ा हमारा अगर कर्तव्य है, प्यार है, अगर करुणा है हमारे जीवन में, तो संसार की दुखी आत्माएं जो है उनको सकाश देना, सबसे बड़ा कर्तव्य यही है हमारा, यहाँ बैठकर एक ही स्थान पर बैठकर विश्व की सब आत्माओं को सकाश देना, सब आत्माओं को, और बहुत शक्तिशाली सकाश देना, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से बाहर तो कहीं जा नहीं रहे, करना है यही, तो यही तो मेन हाउस है, पावर हाउस है, हम जो सकाश, क्योंकि संसार को हमारे सकाश की आवश्यकता है, बाबा ने ये भी कहा बिना बेहद के वैराग्य के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। हमारे उधर एक दो बहने हैं, वो बोले बड़ा दुखी आत्मा को देखते तो खुद आंसू आ जाते थे, और सकाश भी देते और इधर रोते भी है, सकाश देते वो सकाश थोड़ी जाती बहुत दुखी, बिना बेहद के वैराग, जिसको सकाश दे रहे उससे टोटली डिटैच चाहिए हमें, जिनको हम सकाश दे रहे उनसे संपूर्ण अलग, ऐसे नहीं कि उनके दुखी में हम भी दुखी हो रहे और सकाश भी दे रहे और रो रहे भी, ये सकाश नहीं पहुंचेगी नहीं। अपनी स्थिति को अनासक्त बनाना है, लगाव से मुक्त बनाना है, ऐसी स्थिति में बेहद के वैराग वृत्ति में ही बैठकर विश्व को सकाश दी जा सकती है, नहीं तो नहीं। और ये ऐसी अगर सकाश हम रोज देते ना तो फिर हमको अंदर खुशी रहती है, संतुष्टता रहती है। और कुछ बोला एक हफ्ते में, ये तो हो गया अव्यक्तवाणी, वो ये अव्यक्तवाणी, ये आज की वाणी बहुत ज्यादा हो गया, कुंभी पाक ना 14 प्रकार के नर्क दिखाए थे अलग अलग, 14 कोई कोई किताबों में उससे भी ज्यादा है। एक एक नर्क में एक एक पाप किया तो ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, ऐसा ऐसे होगा वैसे वैसे करेगा, अलग अलग उसमें नर्क में जो भी अलग अलग चीजें हैं ना अलग 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 करेंगे, उसका जैसा पाप उठा मिलता है जरूर। और कोई एक पावरफुल पॉइंट फिर खत्म कर, कोई भी इलीगल का इलीगल मत और लीगल मत,
लीगल
बात क्या निमंत्रण देते हो पति दुनिया में आ जाओ
चाबी प्राप्त करनी है तो
क्या करो, परमात्मा प्रेम के अनुभवी बनो। उसके पहले दिन का भी ऐसा ही था कुछ, परमात्मा प्रेम का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। वैराग्य जो है ना, इसके बारे में रोज थोड़े देर चिंतन करते रहना, इस संसार से वैराग्य कैसा है, तो आध्यात्मिक हमारा जो जीवन है वो स्टेबल रहता है। नहीं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वस्तु
संसार से तो हो ही गया ना, अपने बुराई में उसमें वैराग्य,
वो भी है। वो तो वैराग्य की तो बहुत सूक्ष्म परिभाषा, फिर वाणी से भी वैराग्य आता है, एक है वाणी से भी वैराग्य, उससे भी परे जाओ। संसार के प्रति वैराग्य और साथ में ब्राह्मण संसार से भी वैराग्य, ब्राह्मण 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 संसार में भी सोने की जंजीर है बांधे हुए है।
यहाँ बैठे हो बोला नेपाल जाना है, इधर घूमना है, प्रोग्राम तो बना रहे हैं, वैराग कहाँ है?
कुछ नहीं चाहिए वैराग अर्थात कुछ नहीं चाहिए,
बल्कि
आप पे ही जो हो रहा है वो ठीक है, पर खुद कुछ करके वो रचना नहीं करो, नहीं नए बंधन नहीं क्रिएट करो। जो नए पुराने संबंध है लोगों से वो ठीक है, उसी से तो मुक्त होना चाह रहे। अभी नए लोगों से नए, किसी को भाई बना रहे, किसी को बहन बना रहे, किसी को कुछ बना रहे, किसी को माँ बना रहे, किसी का कुछ कर रहे, किसी का किसी से कोई लेन देन कर रहे है, तुम हमको ये दो तो हम उनसे वो लो, मतलब इस तरह का ये जो है ना, नए कोई भी बॉन्डेजेस नए कोई भी क्रिएट नहीं करना, जो है वो ठीक है, क्योंकि उसको अभी कुछ कर नहीं सकते, वो बन गए क्या कर सकते उसके तो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। नए नए जगह पे नए नए बंधन नहीं क्रिएट करना, जितने नए बंधन क्रिएट कर पहले ही छूटे नहीं है और नए क्रिएट कर रहे हो तो दुख बढ़ेगा। और ये वो तो बाबा की जो बाबा जो बातें संसार के लिए कहते हैं, हमको वही बातें अपने जीवन और इस ब्राह्मण संसार को भी अप्लाई करनी है, क्योंकि ब्राह्मण संसार और वो संसार में ज्यादा आज अंतर नहीं रहा है, उसमें जितनी माया उससे ज्यादा माया यहाँ है, जहाँ वो वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ यहाँ हो रहा है,
गड़ है,
चाहे वो पॉलिटिक्स, क्योंकि सारा का आधार तो यही है ना, सब कुछ यहीं बन रहा है तैयार, एक सूक्ष्म राज है इसका भी, सब कुछ यहीं तो तैयार हो रहा है, द्वापर से जो कुछ चालू होगा विधि विधान सारा यही बन रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, सारा कुछ इधर ही बन रहा है। इसके लिए स्वयं को लोहे की जो जंजीर है बाबा कह, उसमें भी बांधना है, बुद्धि का भटकना है बस। जो सेवा यहाँ रह के की जा सकती है, अगर हमको कहे कि आपको कोई सेवा नहीं, एक सेंटर चले जाओ वहां आपको बस 24 घंटा ज्ञान युद्ध करो, तो भी नहीं हो सकती। कोई चले जाओ रिट्रीट सेंटर चले जाओ, कोई विदेश के रिट्रीट सेंटर में चले जाओ, वहां पे आपको खाली ज्ञान योग करना है तो भी नहीं हो सकता है। जो वाइब्रेशंस यहाँ है, जो पावर इस चार धाम में है, वो पावर किसी भी सेंटर किसी भी स्थान कहीं नहीं हो सकता। ये संसार की सबसे पावरफुल भूमि है,
इससे
ऊपर कुछ नहीं। आपे ही कहीं जाने का हो रहा है वो ठीक है, खुद के प्रयत्न से उसको ये सब वो सब नहीं करना, वो सब टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी एनर्जी सब कुछ। हमको एक हमारा एक एक अमृत वेला, एक एक दिन, एक एक क्षण हमारी संसार को आवश्यकता है। अगर हमारा एक अमृत वेला मिस होना मतलब हम संसार के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कितना बोझ चढ़ रहा है हमारे ऊपर। इस यज्ञ की वेदी में ब्रह्मा ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, तो हमें भी इस यज्ञ की वेदी में अपना सब कुछ अर्पण करना है। बहुत बड़ा काम है हमारे, रिस्पॉन्सिबिलिटी संसार को सकाश देने का जो काम है ना, सेंटर की बहनें तो कर रही है, विस्तार कर रही है, नए लोग आत्माओं को ला रही है, पर जो है हमारा एक मुख्य कर्तव्य है ब्राह्मणों को सकाश देना, जो ब्राह्मण आत्मा बन चुकी है उनको और शक्तिशाली बनाना, उनमें पवित्रता की शक्ति और भरना, उनकी पालना करना सूक्ष्म में, बोल से नहीं, सूक्ष्म में, मन से, मेंटल पावर, ये बहुत बड़े बड़े कर्तव्य है हमारे, इसको भूलना नहीं। और इसके लिए बाबा ने कह दिया है, कितना अच्छा वाक्य पूरा मुरली में से, बिना बेहद के वैराग्य के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। तो वैराग्य वृत्ति वैसी उपराम वृत्ति, लगाव से मुक्त स्थिति,
दूसरी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटियां खुद ऊपर इतनी
लेने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं आने दो, स्वयं अगर आ रही है तो ठीक है, वो लेने की इच्छा, उसमें भी फिर स्वार्थ है, उसमें भी कौन सा स्वार्थ है कि मेरा नाम हो जाए,
नाम हो जाए।
आज यहाँ यज्ञ में जो भी है अध्यात्म में आगे वो सारा छूट गया, संसार छूट गया, पर यहाँ इच्छाएं कौन सी है, नाम। डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। विवेकानंद ने लिखा है कि फेम मतलब नाम की इच्छा अध्यात्म में ये सबसे खराब इच्छा कि मेरा नाम हो जाए। जितने सन्यासियों का पतन हुआ ना इसी कारण हुआ, क्योंकि कोई सन्यासी बहुत साधनाएं की, बचपन से लेके साधनाएं की, फिर वो भाषण देने लगा, फिर लोगों को अच्छा लगने लगा, फिर उसके शिष्य बनाने लगा, फिर आश्रम बनाने लगा, फिर फंसते गया एक एक इसमें। हाँ मतलब इस तरह से जो बनते गया ना वो उसमें फिर उसके प्रशंसा आके चाटुकार वो सब आ गए, उसमें फंस गया, फिर सिद्धियां भी कम होने लगी, इसी से पतन हुआ सबको। इसके लिए सन्यासी जो कहते हैं ना, तीन दिन से जगह एक जगह रुकता नहीं,
मिलता
वही छोड़ के चला जाए। हाँ,
कुछ नहीं
लेगा, कुछ नहीं, कुछ आज सब कुछ है, अगर कोई ले बोले ये ले लो वो ले लो छोड़ो, मिलना है तो वापस मिल जाएगा सब कुछ। जिसने दिया है ना, बाबा की अव्यक्त वाणी है, जब बाबा ने सब सेंटर की बहनों को इधर उधर कर दिया था ना कभी, तो उसी 95 की अव्यक्त वाणी है, बाप ने दिया बाप ने ले लिया, तुम्हारा क्या है? जो बाप ने दिया था वो बाप ने ले लिया, अब क्यों मन से समर्पित कह रहे हो अपने आप को? मन से हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, जैसा वो रखेगा, जहाँ रखेगा, जो खिलाएगा, जो कराएगा, ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं है, वो करेगा सब कुछ। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो संपूर्ण मेरे अर्पित आत्मा है उसका सब कुछ मैं करता हूँ बाबा के, पर ये करने नहीं देते। जैसे वो छोटे बच्चे की कहानी है ना, उसका खिलौना टूट गया, भगवान के पहले खुद जोड़ा, जुड़ नहीं रहा है, भगवान के पास ले गए, अब तुम जोड़ो, तो भगवान जोड़ने चालू किया, तो वो बता रहे नहीं यहाँ से नहीं उधर से लगाओ, फिर बोल रहे यहाँ से नहीं इधर से लगाओ, अरे क्या कर रहे हो ये इधर से लगाओ, भगवान बोले ले तू जोड़। दे दिया ना तो फिर सोचो नहीं अभी कि क्या हो गया, निर्संकल्प। ये जो निर्संकल्प निश्चिंत एक वरदान भी था ना, निश्चय बुद्धि का, निश्चय आत्मा, जिसको निश्चय है वो उसको विजय कभी टल नहीं सकती, वो हलचल में कभी आ नहीं सकता, जो निश्चय बुद्धि है सफलता तीव्र गति से और सहज उनको प्राप्त होती है, निश्चिंत जीवन होता है उनका, तो सारा निश्चय के ऊपर है। तो निश्चय है ना तो बस उसको करने दो, जो करना, जाय विधि राखे राम, जाय विधि रही, जैसा वो रखे वैसा रहो, छोड़ दो, सोचो नहीं, असोच बन जाओ। जब तुम बाप की याद में मगन हो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी बाप का काम, भगवान हुआ। वो वही वही टाइम पे संकल्प करना है, वही टाइम पर संकल्प करना है कि ये जो मिला है ना यही अमृत है, वो टाइम पे संकल्प, एक छोटा सा संकल्प करेंगे ना तो वो केवल वो परिस्थिति को क्रॉस करना है, उतनी ही परिस्थिति को क्रॉस करना है, वो समझो वहीं पर माया आती, ये क्या वो क्या ऐसा क्या जो है। वही स्थिति सबसे अच्छी अवस्था है, हमारे मन में कोई भी चीज के बारे में कंप्लेंट ना हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, काम के बारे में, सेवा के बारे में, किसी के बारे में चुप रहो, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, अप्राप्ति में प्राप्ति, सूखी रोटी में भी नर्म रोटी का अनुभव।
लेकिन कईयों को होता है ना, अंदर में वोमिटिंग नहीं करूं तब तक नहीं तो अंदर ही मचलता रहेगा,
कमजोर आत्मा, ज्ञान की शक्ति की कम, बस वही चीज है। जिसने स्वयं को जितना शक्तिशाली बनाया है वो हर परिस्थिति में रह सकता है। विवेकानंद के जीवन में देखो, वो कभी घास में सो रहा है तो कभी महलों में रह रहा है, कई लोग उसको मार रहे पत्थर से, ये चंडाल जा रहा है भगाओ इसको, कई उसका सम्मान कर रहे, स्वागत कर रहे, कोई कह रहा है कि अरे इतना यंग आदमी है और भीख मांगता है, काम नहीं करते आता तुमको, भाग यहाँ से, कोई अपमान सहन कर रहा है, कभी कुछ सहन कर रहा है, पर मन की स्थिति सेम है, ये योगी की निशानी है। आज बोला अनुभवी आत्मा व्यक्ति वायुमंडल के संग के रंग में नहीं आती, तो हम भी तो अनुभवी है, पूर्वज है ना, सबसे ज्यादा अनुभवी तो हम ही है, जड़े हैं, सबसे पहले आए हैं, ये संसार की आत्माएं अभी अभी आई है, सोचो कि ब्राह्मण वाले भी अभी अभी आए हैं, हम तो पहले आए इसके लिए। अच्छा। ओम शंकर।